हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 38, 39 एंड 40। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित महाराज की रक्षा। कुंती महारानी अत्यंत ही सुंदर भगवान की प्रार्थना कर रही हैं और इस प्रार्थना में कुंती महारानी ने भगवान की महानता के विषय में बताया, भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताया, भगवान के विभिन्न अवतारों के कारण के विषय में बताया और अंतिम मत देते हुए कहा कि वास्तव में आप जो भी लीलाएं करते हैं, श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तावे हितम्, सिर्फ जीवों के हित करने के लिए, जो संसार में जीव बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो जब आपकी कथाओं को श्रवण करेंगे, गाएंगे, उनका अनुमोदन करेंगे तो तभी उनका हित होगा। और हित कैसे होगा? तईव पश्यन्त चिरेण तावक, बहुत ही जल्दी आपके श्री चरणों के दर्शन होंगे। और दर्शन करने से क्या लाभ होगा? भव प्रवाहो परमं पदाम्बुज, आपके दर्शन करने से, जब आपके चरण कमलों के दर्शन होते हैं तो भव प्रवाहो परम, सदा के लिए जीव का भव बंधन समाप्त हो जाता है। और इसी तरह से जीव के भवबंधन को समाप्त करके अपने नित्य लीला में प्रवेश कराने के लिए आप यह समस्त लीलाएं करते हो। और आगे कहा कुंती महारानी ने, अभ्यद्यनस्तु स्वकृते हित प्रभो जेहासि सुहृदोनु जीविना ये शान चान्यत भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितं हसन्। हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता कर रहे हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? जब कुंती महारानी ने इतना कहा तब मानो भगवान पूछते हैं कि बुआ, आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? आप उन समस्त राजाओं से जो अब आपके शत्रु बन गए हैं उनसे इतना क्यों डर रही हैं? आपके नैयर के लोग बहुत बहुत बड़े वीर हैं और आपके पुत्र जो पांडव है वो कितने वीर हैं, फिर इस तरह से क्यों अपने आप को हीन समझ रही हैं? तुम्हारा एक एक पुत्र समस्त राजाओं को मौत के घाट उतार सकता, जो तुम्हारे शत्रु हैं, खाली गांडीव धनुषधारी अर्जुन को भी यदि उनके सामने रखा जाए तो वो समस्त राजाओं को मार सकता है। भीम, युधिष्ठिर सब एक से बढ़कर एक वीर है, फिर क्यों अपने आप को इतना हीन समझ रही हैं आप? तब कुंती महारानी उत्तर दे रही हैं कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणामि वेशितो कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यहि ऋषिकारामि वेशितो कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यहि ऋषिकाणामि वेशितो कि वयम, अर्थात कौन है हम, वयम मतलब हम, नाम रूपाभ्याम यानी ख्याति तथा सामर्थ्य रहित, हमारा कुछ भी नहीं है, चाहे यदु भी, चाहे वो यदु हो, सह पांडवा या पांडव हो, आपके बगैर चाहे पांडव हो या यदुवंशी हो, इनमें कोई बल नहीं रह जाएगा। जब तक आप साथ हैं तभी यादों और पांडवों के अंदर बल है, सामर्थ्य है, परंतु आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों की का कोई महत्व नहीं रहेगा। भवतो दर्शनम यहि, भवतो मतलब आपका, अदर्शनम। अदर्शनम मतलब अगर आपकी उपस्थिति नहीं है, आपके दर्शन नहीं है, आपका साथ नहीं है, तो यार ही मतलब फिर दृष्टांत दे रही है कि कैसे हम ऋषिकाणाम इवार। ऋषिकाणाम का मतलब होता है इंद्रियों का, एवं मतलब सदृश ईशतु। ईशतु मतलब जीव का। अगर इंद्रियों के साथ जीव का संबंध टूट जाए या कभी जीव इंद्रियों से विलग कर दिया जाए तो इंद्रियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, तो हम लोगों की वही दशा हो जाएगी जैसे आत्मा के बगैर शरीर की। वास्तव में आत्मा जब तक शरीर के अंदर होती है तभी ही शरीर के अंदर चेष्टा हो सकती है, तभी शरीर कार्य कर सकता है, तभी शरीर बढ़ सकता है, तभी शरीर कुछ का कुछ महत्व होता है। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है उसका कोई महत्व नहीं रहता। नाम और रूप तो रहते हैं, है ना, कुंती महारानी कह रही है कि वयम नाम रूपाभ्याम। नाम तो रहेगा ना उस शरीर का, उस शरीर के जितने भी अंग हैं, जैसे कान है तो उसका कान ही नाम रहेगा, आंख है तो उसका नाम आंख ही रहेगा, और उसका स्वरूप भी चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि जब उसके प्राण निकल जाएंगे तो आंखें अलग स्वरूप धारण करेंगी, नहीं, वो एज इट इज रहेगा। परंतु नाम और रूप के रहते हुए भी इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई इंद्रियां काम नहीं करेंगी। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और उसके शरीर में से आत्मा निकल जाए, और बहुत बड़ा विद्वान हो और उसे उसका कोई लेटर आया हो तो हम बोले देखो आपका कितना लेटर आया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बैठ के पढ़ो। उसके पास आंखें हैं, उसके पास कर्ण है, उसके पास सारी इंद्रियां हैं, परंतु केवल नाम है। आंख का नाम भी होगा, रूप भी होगा, कान का भी, परंतु वो उन आंखों से देख नहीं सकता, उस बुद्धि से विचार नहीं कर सकता, और ना ही उससे कुछ समझ सकता है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तभी वो कार्यशील होता है शरीर, परंतु अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर उस शरीर का कोई, भले कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान शरीर क्यों ना हो, कितना ही सुशील शरीर क्यों ना हो, लेकिन उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर उससे आत्मा निकल जाती है। और कुंती महारानी कह रही है यही दशा हमारी है, आप हो तो हमारा पराक्रम है, हमारे पुत्रों का पराक्रम है, यदुवंशियों का पराक्रम है, आप हो तो हमारा तेज है, यदि आप नहीं होंगे तो कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन का। वास्तव में भक्तों बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि भगवान ही हमारे जीवन के हमारा जीवन का आधार है, हमारे जीवन का आश्रय केवल भगवान है, केवल भगवान की कृपा से हम जी रहे हैं। ज्यादातर लोग तो क्या सोचते हैं कि इस संसार में हमारा बहुत सारा सोर्स है, यहाँ ये सोर्स है, वो सोर्स है, इनके द्वारा हमारा काम हो रहा है, ये बड़े बड़े लोगों से हमारी जान पहचान है, इसके लिए मेरा काम हो रहा है। और राजा बनना तो बहुत बड़ी बात है, जैसे युधिष्ठिर तो कितने बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा थे, एकमात्र सम्राट थे, लेकिन राजा बनना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी सोर्स चलती है किसी की, जैसे रेलवे का टिकट भी अगर आप किस कहीं पर सोर्स चल रही भाई इसका टिकट मिल जाएगा, बोले हाँ हाँ आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रेलवे में तो हमारी जान पहचान है, आपको टिकट मिल, तो बोले इतनी बड़ी बात लगती है कि वाह ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपका जान पहचान वाला है कोई वहां। लेकिन वास्तव में जब चाहे कितनी बड़ी सोर्स क्यों ना हो वो तब तक आपके काम नहीं आ सकती जब तक कि भगवान की कृपा ना हो। वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि कृष्ण ही वास्तव में हमारे रक्षक हैं, और कोई भी सोर्स तब तक काम नहीं आएगी जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी। तो इसीलिए कुंती महारानी अत्यंत ही सुंदर दृष्टांत दे रही हैं। वे कहती हैं कि भवतो दर्शनम यहि, आप यदि अदर्शित हो जाएंगे, आपका दर्शन नहीं होगा ऋषि काणामि वीक्षितो, कि जिस प्रकार जीव जो है वो निकल जाए तो आत्मा किसी जीव आत्मा यदि निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं है। अब जीव क्या है? जीव तो भगवान का अंश है। जैसे सूर्य की किरणें जो है वो सूर्य का अंश है। अब सूर्य की एक किरण यदि कहीं पर पड़े और उसके द्वारा कोई कार्य हो तो ये कार्य सूर्य का कहलाएगा। इसे ही कहा जाएगा ना कि सूर्य के द्वारा यह कार्य हुआ है। इसी रियलाइजेशन को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में कोई भी जीव यदि कोई कार्य कर रहा है, कोई भी मनुष्य कोई कार्य कर रहा है, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसका जाना है? कृष्ण के पास। क्योंकि आंखों से नहीं देखते हैं हम। जीव क्या सोच रहे हैं कि हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कुंती महारानी बता रही कि वयम नाम रूपाभ्याम, कि आंख तो तब भी होगी जब उस देह से प्राण निकल जाएंगे, परंतु मृतक देह की आंख देखती नहीं है। इसका मतलब है वो जो अंदर बैठा हुआ था, जिसके कारण आंख देख रही थी, वो अब निकल गया। और वो क्या है? भगवान की शक्ति। जैसे संसार में क्या होता है, अब अंधेरा होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन रोशनी होती है तो हम क्या सोचते हैं? रोशनी के कारण दिख रहा है। परंतु अब कोई किसी के अंदर आत्मा नहीं है तो उसके सामने, मरे हुए आदमी के सामने यदि 100 वाट का बल्ब भी जला दिया जाए, बल्कि पूरा का पूरा सूर्य भी उसके सामने आकर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन उसे दिखेगा नहीं, क्योंकि दिख रहा उस शरीर के द्वारा नहीं था, उन आंखों के द्वारा नहीं दिख रहा था, बल्कि वो हृदय के अंदर जो भगवान अंश के रूप में बैठे हुए थे उन्हीं की कृपा से दिख रहा था। और जैसे ही वो भगवान उस शरीर से निकल गए तो फिर अब उसका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। उसी तरह कुंती महारानी कह रही है कि मेरे पुत्रों की क्या बात करते हो कृष्ण, चाहे मेरे पुत्र हो या यादव हो, उन सबका बल आप हो, उन सबका तेज आप हो, उन सबका सामर्थ्य आप हो। यदि आप नहीं रहे, आपके जाने के बाद मेरे पुत्रों के अंदर कोई बल नहीं रहेगा। वास्तविकता है ये। एक बार अर्जुन को यह थोड़ा सा मन में हो गया था कि मैंने ये युद्ध जीता, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला में अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ा। भगवान ने अपने सारथी दारुक को कहा कि मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा तो अर्जुन अवश्य आएगा। अर्जुन जब द्वारिका आएगा तो उनको कह देना कि मेरी पत्नियों को सुरक्षित रीति से हस्तिनापुर ले जाए युधिष्ठिर महाराज के आश्रय में। और अर्जुन आया, बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ कि कृष्ण तुम क्यों चले गए। और फिर दारुक ने जब भगवान की आज्ञा बताई अर्जुन को कि भगवान आपके लिए एक संदेश देकर गए हैं कि समस्त रानियों को आप सुरक्षित रीति से हस्तिनापुर ले जाओ युधिष्ठिर महाराज के आश्रय में, तो अर्जुन उन समस्त रानियों को लेकर जा रहा था। रास्ते में वृंदावन, जब वो द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे थे, रास्ते में वृंदावन आया और वृंदावन के पास भील होते ना जो ग्वाले, उन्होंने अर्जुन को लाठियों से मारकर हरा दिया। बहुत मारपीट की उनके साथ और समस्त रानियों को छीन लिया। यहाँ कितनी हैरत की बात है कि इतने बड़े महायुद्ध, कितना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, इसमें सारे महारथियों के पास कितने दिव्य अस्त्र थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब दुर्योधन, कितने बड़े बड़े महावीर थे, परंतु उन सबको हरा दिया अर्जुन ने। लेकिन यहाँ पर केवल भील, ग्वाल, उन्होंने लाठियों से मारकर ही अर्जुन को हरा दिया। तो वास्तविक बात ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ही भीलों के रूप में आए थे, ग्वालों के रूप में, और अर्जुन को ये बताना चाहते थे कि कृष्ण के बिना अर्जुन का कोई महत्व नहीं है। जैसे आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं इस बारे में कि जिस प्रकार आत्मा के बगैर शरीर की कोई महत्व नहीं है, उसकी क्या दशा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन अ चाइल्ड कैन किक ऑन हिज फेस, है मृतक आदमी चाहे कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा आकर उसके मुंह पे लात मार सकता है। और अगर उसके अंदर आत्मा होती है तो क्या, कितने ही बच्चों को पटक कर फेंक सकता है। लेकिन यदि उसके अंदर आत्मा नहीं, भगवान का तेज नहीं है, तो एक छोटा बच्चा भी उसको मारकर चला जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी कर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपना अंश उसके देह से निकाल दिया है। तो ये कृष्ण का एक छोटा सा अंश होता है जिसके कारण हमारा सामर्थ्य है। अनुवाद, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा यदु समेत हमारा यश तथा कार्य तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि कुंती देवी पूरी तरह विज्ञ है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। वो जानती थी कि वास्तव में पांडवों का पराक्रम नहीं है, कृष्ण के साथ के कारण ही वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराजा युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को अपनी प्रतिष्ठा शक्ति तथा यश का तब तक गर्व नहीं होना चाहिए जब तक उसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त न हो। वास्तव में आपको जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, फिर भले आपकी आपके पास कितना ही बड़ा यश हो, कितनी शक्ति हो, सब बेकार है, कोई काम का नहीं है जब तक उसके साथ कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है। जीव सदैव आश्रित है और भगवान उनके परम आश्रय हैं। अतएव हम भले ही अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतियोगी भौतिक साधन क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने ही प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाडार हो जाते हैं, यानी कि उनका कोई महत्व नहीं रहता है। भले ही आप कितने ही साधन क्यों न जुटा लो, लेकिन यदि कृष्ण की कृपा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। जैसे ये देह तभी तक सुंदर दिखती है जब तक भगवान श्री कृष्ण का उसके ऊपर आश्रय होता है ना। कृष्ण की भक्ति के बगैर अगर हम केवल इस देह को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और केवल इस देह को डेकोरेशन उसकी करके उसको डिस्प्ले कर देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस देह का। क्योंकि यदि कृष्ण की भक्ति नहीं है तो फिर इस देह का कोई महत्व नहीं है। जैसे पावर हाउस से यदि बिजली कट हो जाए, तो फिर चाहे आप कितना ही उस ट्यूबलाइट में आप बोलोगे रोशनी नहीं आ रही है, बटन जलाते हो लेकिन फिर भी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है या फैन नहीं जल रहा है, आप उस फैन के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको मारो, ट्यूबलाइट को तोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन ही नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसमें कोई गतिशील हो सकता है, वो कभी कार्य नहीं कर सकता, उसमें रोशनी नहीं आएगी, उसमें हवा नहीं आएगी। उसी तरह से जब जीव का संबंध, जब किसी शरीर का संबंध कृष्ण के साथ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, है ना। जिस तरह से वो शरीर मरा हुआ है जिसका कनेक्शन भगवान से कट जाता है, उसी प्रकार वो शरीर जिसका कनेक्शन आत्मा से कट हो जाता है वो शरीर मर जाता है, उसी प्रकार वो आत्मा भी निर्जीव है जिसका कनेक्शन परमात्मा से कट जाता है। समझ में आया? मतलब जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसकी आत्मा भगवान का, खुद को भगवान का अंश नहीं मानती है, जिस जो आत्मा अपने आप को स्वतंत्र मान रही है, जो भगवान के साथ संपर्क में नहीं है, वो आत्मा जीवित होते हुए भी इस संसार में भले ही दिखता है कि वो जीव जो है वो चल रहा है, फिर रहा है, परंतु वो मरा हुआ है, बिल्कुल मुर्दा है वास्तव में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो केवल नाम और रूप रह जाता है, आंखें रह जाती हैं, कान रह जाते हैं, शरीर रह जाता है, परंतु वो किसी भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। उसी तरह आत्मा जिस शरीर में होती है भले, लेकिन यदि वो परमात्मा के साथ अपने प्रेम को पुनः निर्माण नहीं करती है तो वास्तव में वो आत्मा होते हुए भी निर्जीव है, मुर्दा है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा के कारण चल रहा है, परंतु आत्मा के भी आत्मा तो भगवान है, वो परम आत्मा है। और परम आत्मा से यदि आत्मा का कनेक्शन लूज हो जाता है या कट जाता है तो फिर उस आत्मा का कोई महत्व नहीं, वो केवल ते मृत्यु लोके भूभार भूता, इस पृथ्वी पर भोज है। यदि चल रहा है तो वो पृथ्वी के ऊपर बोझा है कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन वो पृथ्वी के साधनों को यूज कर रहा है, भगवान की शक्तियों को यूज कर रहा है, लेकिन खुद को भगवान का दास नहीं मान रहा, तो वो सबसे बड़ा कलंक है इस पृथ्वी के लिए। वास्तव में भक्तों, क्वीन कुंती की प्रार्थनाओं से हमें इस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम बारंबार कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती नहीं लिखा, क्या लिखे हैं? टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। के ये कुंती महारानी हमें शिक्षा दे रही हैं कि कृष्ण यदि इस संसार में नहीं हो तो ये सारा संसार मुर्दा है। वही है इस विश्व में, इस संसार में, जब ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदशा के रूप में कृष्ण विराजमान होते हैं, तभी तो इस संसार को चला रहे हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान की शक्ति द्वारा चलायमान है, और इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर एक एक जीव जो है वो भगवान की कृपा के द्वारा चलायमान है। भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति के बगैर इस संसार का एक कण भी किसी मूल्य का, उसका भी कोई मूल्य नहीं है, किसी वस्तु का कोई कोई मूल्य नहीं है। संसार का बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा सुंदर व्यक्ति भी यदि भगवान का आश्रित नहीं है तो उसका ज्ञान, उसका सौंदर्य, उसका यश, उसका बल किसी काम का नहीं है। इसी बात को कुंती महारानी आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 39। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षशे। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नेयम शोभित, नेयम मतलब न, न मतलब नहीं, यम मतलब यह हमारा राज्य। आप कहते हो कि आपके पुत्र हैं, आपका राज्य है, समृद्ध है, परंतु नेयम शोभित, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं होगी, कोई सामर्थ्य नहीं होगा। तत्र तत्र मतलब तब, कब? यथेदानीं गदाधर, जैसा अब है इस रूप में, जैसा अभी, क्योंकि आप अभी हमारे साथ हो ना। हे कृष्ण, गदाधर कहती हैं कुंती महारानी कृष्ण को कि हे गदाधर, आप आज हमारे साथ हो तो कितना अच्छा लग रहा है हस्तिनापुर, कितना शोभित लग रहा है, परंतु फिर वो ऐसा सुंदर नहीं दिखेगा। अभी क्यों अच्छा लग रहा है? तो वो कहते हैं त्वत्पदैरंकिता भाति। त्वत्पदैर क्योंकि तुम्हारे चरण कमल अंकिता, क्योंकि हर जगह से जब आप यहाँ से गुजरते हो तो आपके चरण कमलों का चिन्ह लगा हुआ है ना। आप हो तो सुंदरता है, आपकी होने से तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। यदि आप यहाँ हस्तिनापुर से चले जाओगे तत्पदरंकिता भाति, मतलब शोभायमान हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। और क्यों, आपके चरण कमलों की क्या विशेषता है? स्वलक्षण विलक्षित है, कि आपके चिन्हों से विलक्षित है, चिन्हित है। यानी कि यहाँ पर भगवान के चरण कमलों की महत्ता बताते हैं, उनकी विशेषता बता रही हैं कि क्योंकि आपके चरण कमल इतने विलक्षण हैं कि उनके आपके चरणों कमलों के जैसे और किसी के चरण कमल होते ही नहीं है। जैसे भगवान के चरणों में, जैसे हम हमारे साधारण चरण होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान के चरणों में अंकुश, मत्स्य, ध्वज, कमल, स्वस्ति, यज्ञ कुंड और अत्यंत ही सुंदर कमल के, जैसे भगवान के चरण कमल हैं, उनकी विलक्षणता बताते हुए कुंती महारानी कहती हैं, अनुवाद, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के चरणों में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तल यानी तलवे पर ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं वहाँ की नरम भूमि पर यह चिन्ह अंकित होते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित थी, और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रसिद्ध लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भयभीत थी कि कहीं भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य ना घेर ले। वास्तव में भक्तों, कुंती महारानी ये कह रही हैं कि जिस जगह पर भगवान के चरणों की छाप नहीं है वो कभी सुशोभित लगती नहीं है, वो शोभायमान हो ही नहीं सकती, वो सुंदर लग ही नहीं सकती। आज हस्तिनापुर की भूमि इसीलिए सुंदर लग रही है क्योंकि आपके चरण कमलों के द्वारा उसको अंकित किया गया, आपके चरण कमलों से सुशोभित है। वो केवल भूमि की बात नहीं है, वास्तव में हमारा ये देह भी तभी सुंदर दिखता है, हमारे देह की शोभा तभी है जब ये कृष्ण के चिन्ह से अंकित होती है। यह मुर्दा शरीर है, इसका कोई महत्व नहीं है यदि ये कृष्ण का ना हो। वास्तव में हमारे हमारे चेहरे की सुंदरता कैसे है कि उस पर कृष्ण का चिन्ह अंकित हो। इसलिए हमको सदैव भगवान के चिन्ह से अपने मुख को अंकित रखना चाहिए। कैसे? सदैव तिलक लगाना चाहिए, है ना। ये तिलक से हमें कैसे जब कोई तिलक लगाता है तो कैसा लगता है कि हरे कृष्ण वाले, हमारा संबंध जुड़ जाता है कृष्ण के साथ। तो ये जो शरीर है उस पर 12 तिलक लगाते हैं और गले में तुलसी कंठी बांधते, तुलसी कंठी से अपने गले को, गले की शोभा बढ़ाते हैं। दिखता है दूर से, कोई भी देखेगा उसको पता चलेगा ये कृष्ण से संबंधित व्यक्ति है, कृष्ण का चिन्ह है। वास्तव में हमारे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की देन है, और कृष्ण को समर्पित करने के लिए, कृष्ण को अर्पण करने के लिए इस देह को इस लायक बनाना पड़ेगा, इस तरह से श्रृंगार करना पड़ेगा कि हम कृष्ण को समर्पित कर सकें। मानुष्य देहु गेहु जे कुछ मेरो अर्पिलो तुव पद नंद किशोर। हमारे पास जो कुछ भी है, मनुष्य देह सबसे बहुत महत्व, ये जो देह हमें मिला ना, जो शरीर मिला है वो भगवान की संपत्ति है। भगवान कहते हैं मोह मेरा पौनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, ये जो कुछ भी है वो भगवान की संपत्ति है, हमें पुनः भगवान को समर्पित करनी है। तो भक्त लोग गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं और शरीर के 12 अंगों पर तिलक करके यह शरीर को भगवान को समर्पित करते हैं कि हमारे पास हमारा देह है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, जो कुछ भी है कृष्ण तुम्हारे समर्पित करते हैं। वास्तव में इसी से शोभा है, कितना अच्छा लगता है वो भक्त जैसे कंठी धारण की हुई होती है, तिलक लगा हुआ होता है, तो भगवान के सामने या किसी भी भले वो अभक्त के सामने भी जाएगा ना, तो भी उसे उसको देखकर भगवान याद आते हैं कि वाकई में ये भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो जब तक हम अपने आप को भगवान के चिन्हों से अंकित नहीं करते, तब तक कुंती महारानी कहती है नियम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर। अगर आपके चिन्ह यहाँ से हट गए, आपके चरण चिन्हों की जो छाप है वो यदि यहाँ से हट जाएगी, तो वो इतने सुंदर नहीं दिखेंगे जितने कि अभी दिख रहे हैं, वो तो बिल्कुल मुर्दा दिखेंगे। दुर्भाग्य घेर लेगा उस जगह को जहाँ पर भगवान का अस्तित्व तो नहीं है, भगवान की चिन्ह नहीं है, भगवान की रक्षा सुरक्षा में नहीं है जहाँ पर। इसी बात को आगे बताती कुंती महारानी, कहती हैं इमे जनपदा स्वित्था सुपक्कौषधि विरुध वनाद्रि नद्युदन्वन्तो येदन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा स्वित्था सुपक्कौषधि विरुध वनाद्रि नद्युदन्वन्तो येदन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा स्वित्था सुपक्कौषधि विरुध वनाद्रीनद्युदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितै। इमे जनपदा स्वित्था सुपक्कौषधि विरुध वनाद्रीनद्युदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितै। इमे जनपदा श्रद्धा, इमे मतलब ये सब, जनपदा यानी जो नगर है, जो शहर है, श्रद्धा जो आज समृद्ध लगते हैं, वो स्विपक्क, सुपक्क मतलब पूर्णतया से परिपक्व है, क्या औषधि, औषधि मतलब जड़ी बूटियां, विरुधा यानी वनस्पतियां हैं वो, और वना वन मतलब जंगल, अद्री मतलब पहाड़ियां, और नदी मतलब नदियां, उदनवंत यानी समुद्र, ही दंते ही मतलब निश्चय निश्चय ही, ए दंते यानी वृद्धि किए हुए हैं, क्यों तव वीक्षिते, तव मतलब तुम्हारी, वीक्षित मतलब देखने से। अनुवाद, कुंती महारानी कह रही हैं ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां हरी हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से पूर्ण है, यह सब आपकी कृपा दृष्टि से ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री रूपा जी समझा रहे कि मानव संपन्नता प्राकृतिक वरदान से बढ़ती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक उद्योग ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कायम करके उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उससे कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। वास्तव में मानव संपन्नता किससे होती है? प्राकृतिक वरदान से, कि प्रकृति जो है उसके द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है वो एकदम सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, पानी जो होता था वो नदियों का पानी इतना स्वादु होता था अमृत की तरह। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, इमे जनपदा सिद्धा सुपक्का औषधि वीर, के औषधियां जो थी वो एकदम परिपक्व, जो फल होते थे वो इतने मीठे और इतने सुस्वादु, इतने पौष्टिक होते थे, जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा पावर वाली होती थी, और वनाद यानी कि जो वन होते थे जंगल के अंदर, हर एक वस्तु जो जड़ी बूटियां पेड़ वृक्ष पर्वत, पर्वतों से खनिज प्राप्त होता था, पर्वतों से जो खनिज होता है ना कुदरती, जैसे सोना चांदी ये सब प्राप्त होते थे, और इसके अतिरिक्त नदियां जो हैं वो बहुत ही मीठा जल देती थीं। और आज देखो दूसरी चीजों का अगर हम छोड़ दें, आज हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, आज पानी नहीं है जीव के पास पीने के लिए, पानी भी नदियों से नहीं दिया जाता, फ्रेश वाटर कहीं पर नहीं मिलेगा, बोतल में पैक करके दिया जाता है, ईंधन जैसे वो नहीं होता, पेट्रोल की कीमत में पानी मिल रहा है और जीव पी रहा है और बोले हम समृद्ध हैं, लेकिन ये समृद्धि नहीं है। वास्तव में यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मानव सभ्यता या संपन्नता प्राकृतिक वरदान से बढ़ती है, कि जब प्रकृति जो है वो अगर प्रसन्न है प्रकृति, तो फिर अपने अंदर से सारे वरदान आप जीव को प्रदान करती है, और अगर प्रकृति ना संतुष्ट नहीं है सुखी नहीं, तो आज देखो कोई भी वस्तु नहीं है, किसी भी वस्तु का प्राकृतिक वस्तु का हमें हमारे पास अभाव ही रहता हमेशा, जिसके कारण जीव क्या करता है अपनी बुद्धि को अपने मनुष्य शरीर को अपने जन्म को केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही जीव को समाप्त, यानी कि जीवन का विनाश हो रहा है। वास्तव में मानव जीवन इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, बल्कि कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन क्योंकि प्रकृति से वो सब प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो जीव का ज्यादा से ज्यादा समय फैक्ट्रीज लगाने में और ये सब वस्तुएं प्राप्त करने में ही निकल जाता है, तो फिर जीव को वास्तविक मनुष्य जीवन के लक्ष्य के लिए समय नहीं बनता। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, लोगों में उतना ही असंतोष फैलेगा। यानी कि अगर कोशिश करते हैं लोग बहुत ज्यादा ये भौतिक वस्तुओं प्राप्त करने के लिए अलग अलग भौतिक तरीकों से, तो क्या हो रहा है, वास्तविक हमारी प्राण शक्ति निचोड़ी जा रही है। जो शक्ति जो जीव को ये जीवन मिला है कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो केवल और केवल इन कष्टप्रद जो फैक्ट्रीज हैं वो बनाने में, ये सब कारखाने बनाने में और ये भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही अपना जीवन बर्बाद हो रहा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा असंतोष फैलता है। पहले क्या होता था, ये प्राकृत वस्तु जो होती थी वो स्वतः प्राप्त होती थी, तो जीव को इनके लिए ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह लें, अब जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, इससे तो उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन फिर भी साधारणतः मानव जीवन का इधर से नष्ट हो रहा है इन सब चीजों से। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अन्न वनस्पतियां फल नदियां रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से पूरित समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा अनुसार प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जो कुछ भी प्राकृतिक देन है, जैसे वनस्पतियां फल नदियां और रत्न और जो ये सब मादनियात मिलते हैं, जो भी कुछ मिल रहा है वो सब क्यों मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है उसका वरदान है। भगवान जब प्रकृति जब प्रसन्न होती है, और कैसे प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, तो भगवान के आदेश से जब जीव अपना जीविका चलाता है, भगवान के आदेश से कार्य करता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान को प्रसन्न देखकर प्रकृति प्रसन्न होती है, तो प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है। लेकिन जब भगवान को कोई जीव अप्रसन्न करता है, तो फिर उनका अभाव होता है, क्योंकि भगवान अप्रसन्न होते हैं तो भगवान की शक्ति प्रकृति भी अप्रसन्न हो जाती है। यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य इन दैवी वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने ये सब बनाया ही इसलिए है कि जीव इनसे लाभ उठाए, है ना। ये सब नदियों के अंदर जो जल होता है, जो वनस्पतियां होती हैं, फल फूल इत्यादि जो कुछ भी है, जो प्राकृतिक देन है, वो क्यों है? भगवान बताते हैं जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयति जगत, कि ये सब मैंने इसलिए बनाया है ताकि जीव इन सब से लाभ उठाए लेकिन उनका शोषण ना करे। शोषण की प्रवृत्ति नहीं कि मैं इसका प्रभु हूँ, ये प्रवृत्ति नहीं हटाए, बल्कि संतोष धारण करे, इनसे सुखी हो और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। अपनी भोग की लालसा से हम प्रकृति का जितना ही शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा उतना ही फंसते जाएंगे। ये साधारण बात है कि जितना हम प्राप्त करके ये सोचेंगे कि हम ये भी प्राप्त हो जाएं, ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, ये तन दौलत ये सब इत्यादि, हम अगर अपने केवल उसके ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, उतना ही उसमें फंसते जाएंगे। लेकिन यदि उन भौतिक वस्तुओं को यूज करके हम अपने जीवन को खाली चलाने के लिए कि हमें क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है इसके लिए ये सब आवश्यक है, तो इनको यूज करके मुझे वास्तव में अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना है, यही वास्तविक अक्कलमंदी है। यदि हमारे पास प्रचुर अन्न फल वनस्पति तथा औषधियां हैं तो फिर कसाई घर चलाने एवं दीन पशुओं का वध करने से हमें क्या मिलेगा? मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक है, नदियों का बहता जल खेतों को उर्वर बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं, यदि मानव सभ्यता के पास प्रचुर अन्न खनिज रत्न जल दुग्ध आदि हो तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वो बेचारे मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक खोज जोखिमों के पीछे भागती फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक वरदान भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनकर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जाए। कुंती महारानी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब भौतिक वस्तुएं जैसे खाना जल दूध ये सब प्राप्त यदि हो रहे हैं तो फिर किसी को आवश्यकता नहीं है कि वो किसी जानवर का वध करे उसको अपने खाने के लिए, क्योंकि ये सब बना ही खाने के लिए, ये सब वस्तुएं जो है वो इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त हैं। तो उस जीवन को की रक्षा के लिए ये सब अगर आपको मिल रहा है तो बेचारे जानवरों पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए, और अगर ये सब वस्तुएं हमारी आवश्यकता पूरी कर रही है तो फिर बेचारे मनुष्यों को भी भयंकर श्रम के लिए जोखिम में नहीं डालना है, बल्कि क्या करना है, ये सारे प्राकृतिक वरदान भगवान की कृपा पर निर्भर है। तो यदि कोई जीव अगर भगवान की भक्ति करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, भगवान के शास्त्रों में बताए हुए नियमों का पालन करता है, तो भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जाती है। मनुष्य जीवन इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मिला नहीं है, ये तो भगवान स्वतः प्रदान कर देंगे यदि आप भक्ति करते हो। आज के जीवन में भी यदि कोई भगवान पर आश्रित हो जाता है तो उसे भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जो खाने के लिए जीने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है भगवान उसे स्वतः प्रदान करेंगे, उसको अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही बोला जाता है कि भाई अब तो जाहिर सी बात है ऐसे हम रह नहीं सकते, बहुत जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, एजुकेशन है, ये है, वो है, लेकिन जो कुछ भी हो, अगर हम भगवान पर आश्रित होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए जो चीजें आवश्यक हैं भगवान हमें प्रोवाइड करेंगे। हमें भगवान के ऊपर भरोसा तो हो। भगवान बताते 9.22 में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते, जो कंटिन्यूस मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तब मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ, यानी उनकी जो आवश्यकता होती है वो उसे मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास होता है उसकी रक्षा भी करता हूँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे योगक्षेम का तो वहन हो, लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम नहीं करें। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ना ही हमें हमारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होंगी और ना ही हमारे पास जो है उसकी सुरक्षा होगी। तो सबसे पहला नियम तो हमें पूरा करना पड़ेगा ना। इसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे, अतएव आवश्यकता इस बात की है कि भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनकर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त की जाए। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं कि क्योंकि कृष्ण आप हमारे साथ हो, तो जब आप हमारे साथ हो, हमारे हस्तिनापुर में हो, इसी के कारण तो यहाँ पर सब कुछ वास्तव में यह विश्व इसीलिए सुखी है क्योंकि भगवान का वास्तविक इस विश्व में भगवान की वास्तविकता है, भगवान के होने के कारण है ये भगवान इस संसार में है, तभी तो फसल उग रही है। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान इस संसार में है तभी तो जल के अंदर स्वाद है, भगवान इस संसार में है तभी तो पेड़ उग रहे हैं, उन पे फल फूल इत्यादि हो रहे हैं। जैसे जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर की वृद्धि नहीं होती है, जैसे केश नहीं बढ़ते हैं, है ना। अभी कोई मुर्दा होगा तो उसके कभी बाल बढ़ेंगे, भले उसको एक साल तक रखो, उसके बाल नहीं बढ़ेंगे, नाखून नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारे संसार हमारे इस शरीर की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इस आत्मा हमारे अंदर है, भगवान का एक अंश है। उसी प्रकार ठीक उसी तरह से यही हालत ब्रह्मांड की है कि भगवान की शक्ति उसके अंदर है, इसीलिए तो संसार की हर एक वस्तु में उन्नति होती है। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि आज इन्हीं जनपदाश्रित था सुपक कौशली वीरुद्ध, आज इन खूबसूरत सुंदर सुंदर तरीके से जो भाग में अन्न लगा हुआ है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से औषधियाँ प्राप्त हो रही हैं, गेहूँ चना हर फल फूल इतनी पर्याप्त मात्रा में हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, उसके कारण क्या है? वनाद्री नद्युनवत, के वन पर्वत नदियाँ जो प्रचुर मात्रा में अपना सब कुछ दे रही हैं, उसका कारण है हे दंते तव वीक्षिते, कि वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? तव वीक्षिते, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, और जब कोई वृक्ष आपको देखता है तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, वो प्रचुर मात्रा में फल देने लगता है। आपके चरण चिन्हों को देखकर पर्वत प्रचुर मात्रा में खनिज प्रदान करते हैं, आपके केवल दर्शन मात्र से वनस्पतियां प्राप्त हो रही हैं, अन्न प्राप्त हो रहा है, हर एक वस्तु फल फूल इत्यादि कण कण हस्तिनापुर का आज बहुत ज्यादा संतुष्ट है आपके दर्शन मात्र से। आपको देखकर प्रकृति अपना संपूर्ण जो कुछ उसके पास है वो सब लुटा रही है, तो यदि आप चले जाओगे तो कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, सारा सब जो कुछ हमारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, वीरान हो जाएगा हस्तिनापुर। मतलब प्रार्थना का सार क्या है? कुंती महारानी कह रही हैं कि मत जाइए प्रभु, आपके बगैर हम मुर्दा की तरह हो जाएंगे, भले ही हमारा शरीर जिंदा रहेगा लेकिन ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर से आत्मा निकल गई है। इसलिए कुंती महारानी भगवान को कह रही हैं कि आप हमारे साथ ही रहिए, कृपया साथ रहिएगा। अब देखते हैं भगवान कुंती महारानी की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। या कुंती महारानी आगे क्या प्रार्थना कर रही हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।